ओम शांति। एक बौद्ध भिक्षु एक बार सुबह सुबह भिक्षा के लिए किसी गांव में पहुंचा और एक दरवाजे पर उसने दस्तक दी। भिक्षु अत्यंत वैरागी स्वभाव का था। बाल ब्रह्मचारी था। संसार की इच्छाएं और तृष्णाओं का परित्याग कर चुका था और कठोर साधना में रत था। उस सुबह एक दरवाजे पर उसने दस्तक दी और दरवाजा एक स्त्री ने खोला। उस भिक्षु ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए आया हूं, तो स्त्री ने उसे कुछ चावल दिए, परंतु जैसे ही उस सन्यासी ने उस स्त्री को देखा, उसे लगा कि मैं इसके साथ थोड़ी और बातें करूं, तो उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने कहा, हाँ, आपका स्वागत है। तो वह अंदर आकर बैठा। बैठने के बाद उसने कहा कि मुझे अभी अभी थोड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकेगा? तो स्त्री ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूं, तब तक आप विश्राम कीजिए। सहज वैरागी मन में राग उत्पन्न होने लगा था और वो भिक्षु बैठे बैठे मन ही मन कुछ कल्पनाएं करने लगा, सोचने लगा अपने संन्यस्त जीवन के विषय में। कितने वर्षों से साधना कर रहा हूं, परंतु फिर भी कोई अनुभव नहीं और न ही कोई सुख, केवल साधनाएं करते जा रहा हूं। और फिर बीच बीच में उस स्त्री का ख्याल करने लगा। उसने उस स्त्री से वार्तालाप की, घर में और कौन कौन है? उसने कहा, केवल पिताजी है जो बाहर गए हैं। भोजन तैयार हुआ और उस भिक्षु ने भोजन किया। फिर उस स्त्री से वार्तालाप की, महिमा की भोजन की थोड़ी सी। भोजन पूरा हुआ और फिर उस भिक्षु ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, क्या मैं यहां कुछ समय सो सकता हूं? तो स्त्री ने कहा, क्यों नहीं। उसने उसके लिए शैया बिछाई और कुछ समय के बाद वो जब जागा, उसने बीच में कुछ स्वप्न भी देखे। सोच रहा था, कितना ना अच्छा होता कि संसार में ही रह जाऊं, गृहस्थ जीवन के विरुद्ध में दिन रात प्रवचन करते रहता हूं, परंतु गृहस्थ जीवन में भी तो शायद सुख है। इस तरह का चिंतन, स्वप्न, दिवा स्वप्न, वो उठता है। उठने के बाद फिर वार्तालाप करता है और उस स्त्री से कहता है, आपके पिताजी कब आएंगे, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। और अचानक वो स्त्री कहती है, भिक्षु सावधान, तुम सन्यासी हो, जो सोच रहे हो वो तुम्हारे नियम और मर्यादा के विरुद्ध है। और इतने में वो सन्यासी होश में आता है और वापस जाने लगता है और उस स्त्री के विषय में उसे पता चलता है बाहर से कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, परंतु दूसरों के विचारों को वो पढ़ने वाली स्त्री थी। ऐसी ब्रह्मज्ञानी तपस्विनी आत्मा थी। आत्मग्लानी से भरा हुआ यह भिक्षु वापस अपने शिविर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध से जाकर कहता है कि आज ऐसा ऐसा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है, इसके बाद मैं उस गांव में ही नहीं जाऊंगा अभी भिक्षा के लिए। महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि नहीं, यदि तुम्हें वास्तविक पश्चाताप और प्रायश्चित करना है तो फिर से उसी गांव में जाओ भिक्षा के लिए और फिर से उसी घर में जाओ, परंतु अब जब जाओगे तो ये याद रखना कि तुम्हारे हर विचार को, तुम्हारे हर संकल्प को वो जो स्त्री है वो पढ़ रही है, देख रही है, इस अवेयरनेस के साथ, इस जागरण के साथ, इस भाव के साथ। वो पहले कहता है नहीं, परंतु फिर बाद में मान जाता है, डरा हुआ सा, कैसे वापस वहीं चला जाऊं, क्योंकि वो स्त्री तो मुझे जानती है। फिर से वो उसी गांव में आता है, उसी द्वार के सामने, परंतु अब उसकी स्थिति कुछ और होती है। अब उसे पता है कि एक एक संकल्प, एक एक विचार जो मेरे मन में चल रहा है, ये सामने की जो स्त्री है थॉट रीडर है, विचारों को पढ़ने वाली सिद्धि इसे प्राप्त है। तो मेरे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, अपने इन विचारों के प्रति संपूर्ण जागरूक, अलर्ट, माइंडफुल, चौकस। इस अवस्था में वहां पहुंचता है, दरवाजा फिर खुलता है और वो उसको देखता है और देखते ही उसे संकल्प आता है कि ये एक ज्ञानी स्त्री है। बौद्ध धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदू और बौद्ध में अंतर यही है। यहां आत्मा है, वह अनत्ता है। अनत्ता पाली शब्द है, अर्थात नॉन सेल्फ। आत्मा का अस्तित्व वो नहीं मानते हैं। तो उसने केवल ये विचार किया कि मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक भावना सामने की ये स्त्री पढ़ रही है, और वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ज्ञानी है। वो भिक्षा लेता है, फिर कहता है क्या मैं अंदर आऊं, वो कहती है आ जाओ। फिर कहता है कि मैं भूखा हूं और वहां बैठता है, और वो फिर कहती है मैं आपके लिए भोजन बनाती हूं, परंतु जब जब वो भोजन बना रही होती है तब तब उसके मन में यही संकल्प होता है कि मैं कौन हूं, एक वैरागी हूं, और ये कौन है। एक एक संकल्प को सामने वाली आत्मा पढ़ रही है। भोजन खाता है, वहां रुकता है, विश्राम करता है और फिर वहां से लौट कर आता है, और उसके एक एक विचारों में वह जागरण रहता है। और जब लौटता है तो विजय की खुशी होती है। पलायन नहीं, भागना नहीं, एस्केपिज्म नहीं, परंतु उसी परिस्थिति में रहते हुए अब सब कुछ अंदर का बदलता उसे दिखाई दिया और वो वहां से वापस लौटा संपूर्ण पवित्र विचारों के साथ। कामनाएं इतनी सूक्ष्म है, दृष्टि और वृत्ति की साधना के बाद एक जबरदस्त तपस्या के बाद ही पवित्र होती है। इसके लिए पहला पाठ ही पवित्र दृष्टि और पवित्र वृत्ति का है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी चमड़ी को देखना, चमड़ी के बारे में सोचना किसका काम है? प्रश्न पूछकर बाबा ने छोड़ दिया है। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का, ब्राह्मणों का, फरिश्तों का। पहला है देखना इसको, इस चमड़ी को। देखने के बाद फिर विचार, विचार के बाद फिर कल्पनाएं, फैंटेसी, इमेजिनेशन। उसके बाद बोल, मैसेजेस। उसके बाद प्लानिंग। उसके बाद एक्शन, स्पर्श। विकारों की यात्रा है। शुरुआत है देखने से, विचार से, संकल्प से। इस चमड़ी को देखना, इसके विषय में सोचना, विकार में व्यक्ति कब फंस जाता है उसे ही नहीं पता चलता है। फंसने के बाद पता चलता है कि अब फंस चुका हूं। इसके पहले भी बताया था, 20 अक्टूबर 1980 अव्यक्तवाणी। यह देह मुर्दा है। यह देह क्या है? मुर्दा, डेड बॉडी, कॉर्प्स, कैडवर। यदि मुर्दे से प्रीत रखी तो ये समझना कि हम मुर्दा घाट में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। कहां पहुंच जाएंगे सतयुग में? मुर्दा घाट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी 1969, कुमारों से मुलाकात। यह देह सांप है, फुल स्टॉप। सांप में विष होता है, फुल स्टॉप। इसलिए सभी कुमार आज से यह प्रतिज्ञा करेंगे कि हम केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे। ऐसी साधना करनी है, और यही एकमात्र साधना, यही अल्फा है। बेटावाद में सूफियों की कहानी है, बाइबल में लिखी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं मानते, परंतु सूफी संत बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब छोटा सा था तो वह ईसा मसीह, उसको ग्रीक अल्फाबेट ABCD, हेब्रू अल्फाबेट, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, लैम्ब्डा, मू, इप्सिलॉन, कैपा, ये सारे शब्द हैं उस भाषा के। उसको जब पढ़ाए गए तो उसने कहा, जब तक मुझे अल्फा समझ में नहीं आएगा मैं बीटा नहीं पढ़ूंगा, मुझे पहले अल्फा सिखाओ क्या है। उन्होंने कहा, अल्फा अल्फा है वो का। उसने कहा, नहीं, जब तक मुझे संपूर्ण रूप से अल्फा समझ में नहीं आएगा मैं बीटा नहीं पढ़ूंगा। यही पहला चैप्टर है, यही सबसे पहली शिक्षा है। अल्फ क्या है? बाद में बे, और पहला चैप्टर ये है, मैं आत्मा हूं। तो आज बाबा ने भाइयों को क्या कहा, क्या क्या टाइटल दिए? महावीर हो, आज्ञाकारी हो, और क्या हो? हनुमान हो, स्वराज्य अधिकारी हो, और कौन हो? ताज, तख्त, तिलक और राज्य के अधिकारी हो, और क्या हो? शक्तिशाली हो, और क्या हो? जब भी किसी को देखो तो नजर वृत्ति सहज कहां जाए? मस्तक मणि की ओर जाए। बहन नहीं देखो, ईश्वरीय बहन नहीं देखो, कन्या नहीं देखो, कुमारी नहीं देखो, माता नहीं देखो, निमित्त सेवा केंद्र सेवाधारी ये भी नहीं देखो। क्या देखो फिर? शिव शक्ति देखो, मां देवी देखो और जगत माता देखो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणि संसिताम् नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणि संसिताम् या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेणि संसिताम् या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणि संसिताम्। एक एक बहन को क्या देखो? शक्ति रूप देखो, देवी देखो। यदि देवी के सामने कोई विकारी वृत्ति वाला आ जाए तो क्या होता है? शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, महिषासुर, क्या हुआ इनका? वही होगा। देखा है ना, हाथ से आग का गोला निकलता है तो कभी भ्रुकुटी से आग का गोला निकलता है, राक्षस भाग रहा है उसके पीछे वो गोला आग का, और आखिर में उसको भस्म कर देता है। तो जब भी देखो तो क्या देखो? शिव शक्ति रूप में देखो। 1876 में शारदा मुनि जब श्री रामकृष्ण के पास आई, विवाह तो पहले ही हो चुका था, जब उनकी उम्र 18 वर्ष की थी, 2500 साल में, 2500 के इतिहास में शायद इतिहास का एकमात्र उदाहरण, जब एक पति ने अपने पत्नी की देवी के रूप में पूजा की, मां के रूप में पूजा की, सोईशी पूजा, साक्षात काली का रूप उसको समझा, वैसी ही उसकी पूजा वंदना आराधना की और पूजा करते करते स्वयं भी समाधि में और वो शारदा मां वो भी समाधि में, विकार का अंश नहीं, मां ही समझ लिया अपनी पत्नी को, उसी की पूजा की। महात्मा गांधी एक बार जब श्रीलंका गए थे तो उनको ये नहीं पता था उनके साथ जो स्त्री है वो कौन है, वो उन्हें बा कहते थे। तो मंच संचालक ने कहा कि आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं और उनके साथ उनकी मां भी आई है। वो तो उनको बाद में पता चला कि ये जिसे बा कह रहे हैं वो कस्तूरबा उनकी मां नहीं पत्नी है। तो उन्होंने भाषण के बाद, प्रोग्राम के बाद उनसे माफी मांगी। तो महात्मा गांधी ने कहा, आपने ठीक ही कहा है, वैसे वो मेरी पत्नी थी, अब तो मां ही है। और इस संबंध में विकार नहीं आ सकता। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेणि संसिताम्। इस संसार की जितनी स्त्रियां हैं शक्ति रूप है, मां रूप है, अपने को मां ही समझना। स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण जब पूरा किया और स्टेज से नीचे उतरे अमेरिका में, एक विदेशी महिला दौड़ दौड़ कर उनके पास आई और कहने लगी कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे विवाह भी करना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपका हमने भाषण सुना, इतना तेजस्वी व्यक्तित्व, मैं चाहती हूं कि मैं आपसे विवाह करूं और हमारा पुत्र आप जैसा ही तेजस्वी हो। इसलिए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक विकल्प और भी है, क्योंकि शादी कब होगी और पता नहीं बेटा ही होगा या बच्ची होगी, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लो, इतना लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और शिव शक्ति अपने आप को क्या समझे? उस स्वरूप में स्वयं को स्थित कर देना। और भाइयों को क्या समझे? महावीर। और क्या समझे? हनुमान। और क्या समझे? गणेश। पुत्र भी बना सकते हो। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाप दादा किसको देख रहे हैं? आज बाप दादा कौन सा संगठन देख रहे हैं? पुरुषार्थी आत्माओं का संगठन देख रहे हैं। इस एक शब्द में स्थित हो जाओ, कौन से? पुरुषार्थी, तो क्या हो जाएगा? सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। उस एक शब्द में स्थित हो जाओ, उसमें ही संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। पुरुष और अर्थी, पुरुष अर्थात मालिक। सांख्य शास्त्र कहता है संसार दो चीजों से बना है, पुरुष और प्रकृति। बस दो ही है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। देह प्रकृति है या तत्व प्रकृति है, और आत्मा पुरुष है। तो आत्मा प्रकृति के अधीन नहीं, आत्मा अधिकारी है, पुरुष अधिकारी है, प्रकृति अधीन है। रथी, रथ, रथी रथ के अधीन नहीं, रथ को अपने अधीन रखने वाला है। तो रथी और रथ, पुरुष मालिक और प्रकृति, प्रकृति धोखा ना दे, इंद्रिया चलायमान न हो जाए, अधिकारीपन का नशा। तो चार प्राप्तियां बाबा ने बताई, कौन कौन सी? तुम्हें हुई है ताज, कौन सा ताज? विश्व कल्याण की सेवा का ताज, तख्त, दिल तख्त में स्नेह स्वरूप से समाये हुए, ताज तख्त और तिलक, अधिकारी पने का के स्मृति का तिलक, और राज्य कौन सा? सर्वशक्तियों का राज्य, स्वरक, स्व का राज्य, स्वराज्य। सारी शक्तियां बाप की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो तुम हकदार हो, तुम अधिकारी हो। चेकिंग करने को कहा है, तिलक मिट तो नहीं जाता। तिलक मिट जाना अर्थात विस्मृति, तिलक मिट जाना अर्थात बाप की स्मृति नहीं, देहधारी की स्मृति। बाप से प्यार कम और देहधारियों से प्यार ज्यादा। बाप का चिंतन और उसके ज्ञान का चिंतन कम और मनुष्यों का चिंतन ज्यादा। तिलक मिट जाना, तख्त से नीचे। अवज्ञा करोगे तो तख्त से स्वतः ही नीचे आ जाओगे। बाप तख्त से तुम्हें नीचे नहीं करता है, जैसे जैसे श्रीमत की अवज्ञा करोगे, एक एक अवज्ञा और तख्त से धीरे धीरे नीचे। अमृत वेला कम शक्तिशाली, तख्त से नीचे। मुरली में बुद्धि भटक रही है, तख्त से नीचे। सेवाओं में मैं मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और चौथा मैं से क्या हो जाए, मां से क्या हो जाता है आज की मुरली, मैं करते रहो तो मुरझाइश, मायूसी, मगरूरी और चौथा मैं, चौथा मां, मतभेद का चक्र तख्त से नीचे, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, परदर्शन, झरमोई झगमोई की बातें तख्त से नीचे, राज्य राजा बनने के बजाय अधीन प्रजा तो नहीं बन जाते हो, परवश तो नहीं हो जाते किसी संस्कार के अधीन, पुराना संस्कार गया नहीं, माया तो नहीं आ जाती, इसलिए क्या करो, सेफ्टी का साधन क्या है, अटेंशन और चेकिंग का पहला डबल लॉक, दूसरा याद और सेवा का, बार बार अटेंशन, सो गए फिर से जागो, बेहोश हो गए फिर से जागो, मूर्छा में चले गए फिर से जागो, विस्मृति की नींद में सो गए जागो जागो और जागो, खुद खुद को उठाते रहना, उठो उठो उत्तिष्ठ भारत, ये भारत की श्रेष्ठ आत्मा है, जागो, जागरण, चेकिंग, ये डबल लॉक है, चेकिंग करना और चेंज करना, अटेंशन स्वयं को स्वयं दिलाना, अलबेलापन नहीं, पुरुषार्थी हूं, कर रहा हूं, चल रहे हैं, बनना तो है, ये भाषा महावीर की भाषा नहीं है, महावीर अर्थात क्या कर दे, लंका को जलाने से पहले अंदर के रावण के वंश अंश को जला दे, ये महावीर की परिभाषा है, तो लॉक लगा के रखना है, जो खजाने हमें भगवान से मिल रहे हैं उनको कोई लॉक नहीं है, यदि है भी तो बाबा ने उसकी चाबी और किचन भी बताया था, बाबा चाबी है और किचन सर्व संबंध है, गोल्डन किचन, परंतु शायद कई मुरलियों में तो बाबा ने कहा खजाने खुले हैं, जितने लेना है ले लो, फिर कुछ मुरलियों में बाद में बाबा ने कहा ये चाबी है, ये चाबी लगाओ, चाबी घुमाओ, विदेश में एक अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध जादूगर हैरी हुडिनी पिछली सदी में हुआ था, जो ऐसे ऐसे चमत्कार करता था कि उसके उसको हाथ बांध दो चाबी लगा दो हैंडकफ, पैर बांध दो, सारे शरीर को बांध दो ताले लगा दो बहुत सारे, फिर उसको एक बॉक्स में डाल दो, उस बॉक्स को ताला डाला दो लगा दो, उसको दूसरे बॉक्स में डाल दो उसको ताला लगा दो और समुद्र में फेंक दो, कुछ ही पलों में सारे ताले तोड़कर बाहर निकल आता था हैरी हुडिनी, कई सारे प्रयोग किए गए उसके ऊपर, अलग अलग प्रकार से उसके हाथ बांधे गए, वो कैसा भी ताला लगाओ वो तोड़कर बाहर आ ही जाता था, परंतु एक बार जब वो इटली में था तब ऐसा हुआ कि 3 घंटा तक वो बाहर नहीं निकल पाया, बहुत कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की पर फिर भी नहीं निकल पाया, और जब बहुत मुश्किल से सभी ताले तोड़कर निकला तो उसने बताया कि मेरे साथ छल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ताले लगे हुए नहीं थे, खुले थे, और उसको आदत थी ताले तोड़कर निकलने की। एक तरफ भगवान है, उसके सारे खजाने वो हम ले लेते हैं, वहां कोई ताला नहीं, परंतु जब खजाने हमारे पास है तब क्या, तब ताले लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि माया की नजर हमारे खजानों पर निरंतर है। कब विकार उत्पन्न हो जाए, कब अपवित्रता का संकल्प आ जाए और पवित्रता का खजाना ले जाए, इसलिए डबल लॉक लगा के रखना है। तो आज विशेष बाबा ने कुमारों से, महावीरों से मुलाकात की है। हम आज सुबह पढ़ रहे थे हनुमान जी के विषय में, पढ़ रहे थे अर्थात सुन रहे थे, यहां पर घूमते घूमते अचानक कानों में कहीं हनुमान चालीसा चालू था, तो वो हमने सुना। उसमें जो कुछ कहा है वो सब कुछ ज्ञान युक्त रीति से अब बाबा उसका अर्थ समझा रहे हैं। तुलसीदास ने जब वो लिखा था वो किसी और अर्थों से लिखा था। सब जानते हैं हनुमान चालीसा, पढ़ते थे भक्ति में, पाठ करते थे कि नहीं? तो आज हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत कहां से है कौन बताएगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो कुमार अर्थात, कुमारी अर्थात ज्ञान के गुणों के सागर। मुरली में आज कहा है ऐसी ज्ञान मूर्त आत्माएं, साक्षात्कार मूर्त आत्माएं, याद मूर्त आत्माएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर। सारे लोक को, तीनों लोक को उजागर करने वाले, प्रकाशित करने वाले, ऐसा दृढ़ संकल्प जिन्होंने लिया है, कोई भी देखे तो तुम्हारी आंखों से क्या नजर आए और तुम्हारे मस्तक में क्या नजर आए और तुम्हारे मुख से क्या निकलते हुए वो सुने, वरदानी बोल तुम्हारे मुख से निकल रहे ऐसी आत्माएं सुने। तुम्हारे मस्तक से क्या निकल रहा है, मस्तक मणि को देखे और आंखों में ज्वाला को देखे। तो जय हनुमान। भक्त महिमा गा रहे हैं, संसार की आत्माएं, हनुमान कौन है? हम। और माताएं कौन है? शिव शक्तियां। राम दूत अतुलित बलधामा, राम के दूत है, राम के संदेश वाहक है, निकल पड़े हैं कार्य के लिए। आज की मुरली में चाहे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े, परंतु क्या, कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े, परंतु श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ परिवर्तन करके दिखाएंगे ये संकल्प वाले। अतुलित बल धामा, डबल शक्तिशाली। कुमारों को बाबा क्या कहते हैं? कुमार अर्थात डबल शक्तिशाली। एक तो शरीर की भी शक्ति है और दूसरी आत्मिक शक्ति भी है। ऐसे अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो पवन समान है, पवन के पुत्र। आगे का एक जगह का है पवन कुमार, पवन समान हल्के है, इतनी तीव्र गति से, द्युत गति से सेवा करने वाले हैं। ऐसे डबल लाइट अर्थात ब्राह्मण आत्मा महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर है, क्या है? शक्तिशाली है, विक्रम पराक्रमी है, ऐसे बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति निरंतर संग है और कुमति को त्यज दिया है, त्याग दिया है। कंचन वरण विराज सुभेसा, सुभेसा अर्थात हैंडसम, सुंदर। आत्मा ही सुंदर है, आत्मा ही सुभेसा है, क्योंकि वहां पर पवित्रता की क्या है? शक्ति है। कानन कुंडल कुंचित केसा, घुंघराले बाल हाथ वज्र है, हाथ में वज्र है, और ध्वजा विराजे, विजय। दीदी दादी को डबल खातरी तुम्हारी यहां हुई है, सूक्ष्म भी और स्थूल भी, तो इस डबल खातरी से क्या गारंटी कर जाएंगे? अभी हम सदा विजयी रहेंगे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, जनेऊ धारण किया है पवित्रता का। शंकर सुवन केसरी नंदन, शिवपुत्र हो, तेज प्रताप, तुम्हारा तेज कैसा है? बहुत शक्तिशाली है, सारा जग वंदन करने वाला है, सारे संसार के हाथ सामने तुम साक्षात्कार मूर्त हो। बाबा ने एक कड़ी बताई है आज की मुरली में, निमित्त भाव धारण करो या तो बालक सो मालिक, ये फर्स्ट स्टेप, ये होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेज स्वतः ही आ जाएगी, निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति अगर होगी तो उसके आगे का निरंकारिता स्वतः ही आ जाएगी, अगर निरंकारिता और निराकारी स्थिति है तो कर्मों में निर्विकारिता स्वतः ही आ जाएगी, और जब ये तीनों आ जाएंगे तो निर्भय होंगे और आगे साक्षात्कार मूर्त होंगे। ऐसी एक कड़ी बताई है मुरली के दूसरे भाग में। सबसे पहला निमित्त भाव, दूसरा बताया बालक सो मालिक, अपने आप को बालक समझो, इस एक शब्द के अर्थ में टिक जाओ। बाप ने कहा बच्चे, बच्चों ने कहा बाप, यही नॉलेजफुल है, इसमें सारा नॉलेज समाया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप, इसको करो तो आगे का स्वतः ही आ जाएगा निराकारी। जैसा देश जहां जाना है वैसा ही क्या हो? देश हो। विद्यावान गुणी अति चातुर, समझदार, चतुर है, विद्यावान है, ज्ञान को जिसने धारण किया है, गुणी है, समझदार। क्या ये समझदारी की निशानी है? पुरुषार्थी तो हूं परंतु क्या करूं, बाबा ने कहा यह समझदारी नहीं है, यह अलबेलेपन की भाषा है। प्रभु चरित राम काज करीबे को आतुर, कौन सी आतुरता है? राम काज, राम की सेवा करने की ही एकमात्र आतुरता है, एक ही लगन है बस, कि कैसे उसका संदेश विश्व की आत्माओं को सुनाऊं, यही तो ताज फैना है। ताज कौन सा है? विश्व सेवा का, विश्व कल्याण का। राम काज करीबे को आतुर, अपना कोई कार्य नहीं है, जीवन अर्पण कर दिया है, जीवन को इस यज्ञ की वेदिका पर स्वाहा किया है, इसके लिए राम काज करीबे को आतुर, यही एक ही आतुरता है बस, और कोई आतुरता नहीं। प्रभु चरित सुनी भोग पे को रसिया, क्या अच्छा लगता है सुनने को? केवल और केवल प्रभु चरित, प्रभु की वाणी, प्रभु के बोल, उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ रूखा सूखा है संसार का। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि उसकी वाणी के अतिरिक्त संसार में रस ही ना हो, वो जो कह रहा है उसकी मुरली, इसी मुरली में बाबा ने कहा है तुम कौन हो मास्टर मुरलीधर, वो विषैला सांप अब तुम्हें सताता नहीं है, परंतु क्या बन गया है, वो शैया बन गई है, वो कालिया नाग के ऊपर डांस करने वाले तुम हो। योद्धे हो या ब्राह्मण हो, पूछा है बाबा ने, कौन से संस्कार है? अगर अभी योद्धापन के संस्कार है तो वहां पर भी कहां आओगे, क्षत्रिय में। यहां कौन से संस्कार हो, विजय के संस्कार, विकारों के साथ द्वंद में युद्ध में ही जीवन ना हमारा जा रहा हो। ये हम कब तक कहेंगे कि अभी भी दृष्टि वृत्ति चलायमान हो रही है, अभी भी मन हलचल में आता है। राम लखन सीता मन बसिया, विद्वान इसके दो अर्थ निकालते हैं, या तो राम उसके मन में है या राम के मन में वो है, दोनों ही सही है। सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, जब चाहो तब सूक्ष्म भी बनता है पर विकट रूप धरी लंक जरावा, परंतु लंका को जलाने से पहले क्या करना है, अपने अंदर के रावण के अंश और वंश को समाप्त करना है। विकट रूप धरी लंक जलावा, सारे संसार लंका है, विकार ही विकार है, और यदि हमारे ही अंदर विकार है हम दूसरों को विकारों से मुक्त नहीं कर सकेंगे। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, भीम जैसा रूप धारण कर लेता है। जब विकार हमारे सामने हो तब क्या करना चाहिए, समझौता, प्यार, रहम दिल, क्या विकराल रूप। लाए संजीवन लखन जी आए, क्या लेकर आए हनुमान जी, संजीवनी बूटी, श्री रघुबीर हरिशूर लाए। राम जी को बड़ी खुशी हुई, यदि कोई मूर्छित आत्मा को तुमने सुरजित कर दिया तो राम जी को बहुत खुशी होगी, उसके उर में खुशी खुशी होगी तुम्हारे लिए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे गुरु भाई हो बाबा कहते हैं, परंतु काम कौन सा करना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। एक बड़ी हंसी की कहानी है कि श्री हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए तो अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बिल सबमिट किया, ट्रेवल का अलाउंस, ये बिल हुआ है मेरा जाना आना, उसका ये बिल हुआ, परंतु अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। उसके तीन कारण बताए, पहला कारण तो ये कि अयोध्या के जो राजा थे भरत, विदाउट परमिशन आपने उनके एरिया में ट्रेवल किया, इसके लिए वापस रिफंड नहीं होगा। दूसरा कारण ये था कि आप क्लास 3 ऑफिसर हो, ग्रेड 3 ऑफिसर, तो अलाउड नहीं है एयर ट्रेवल परमिट नहीं है, ये दूसरा ट्रेवल बताया। और तीसरा, आपको केवल संजीवनी बूटी लाने को कहा था, अनऑथराइज्ड एक्सेसिव लगेज, इन तीन कारणों के वजह से नॉट, तुम्हारा रिफंड नहीं होगा। पर हनुमान जी राम जी के पास गए, अब क्या करें, मुझे रिफंड तो चाहिए। तो राम जी ने कहा बात तो सही है परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी री एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन दे दिया। ये जो तीन ऑब्जेक्शन ऑडिटर्स ने निकाले उसके, तो लक्ष्मण जी पहुंचे ऑडिटर के पास एप्लीकेशन लेकर, और थोड़ा सा ब्राइब वगैरह करके 10% टीडीए का वो सब करके उन्होंने कहा कुछ करो परंतु ये होना चाहिए, तो बाद में फिर सैंक्शन हुआ। परंतु फिर एक नया ड्राफ्ट बना और जिसमें फिर तीन बातें थी, पहला ये कि भले वो राम भरत के राज्य में गए थे और अयोध्या में, परंतु राजा तो फिर भी तो राम ही थे, क्योंकि पादुका तो राम की रखी थी, राम काज करिबे को आतुर, तो ये काम तो राम का ही था, राज्य राम का ही था, इसलिए पास। दूसरा, क्लास फोर ऑफिसर भले था परंतु इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए एयर ट्रेवल करना पड़ा, इसलिए दे दो। और तीसरा, एक्सेसिव लगेज था एक्सेप्टेड, परंतु यदि गलत संजीवनी बूटी लाता है तो एक्सेस ट्रेवल करना पड़ता, बार बार उसका ज्यादा रिफंड देना पड़ता। तो ऐसे बिल पास हो गया, रिफंड हो गया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। स्वयं भगवान उसको कंठ लगाता है, सारा जग उसके गुण गाता है। भगवान हमारे गुण गाए, भगवान हमें कंठ लगाए, तो ऐसी हनुमान जैसी धारणाएं चाहिए। हनुमान को पूछा गया समय क्या हुआ है, वो कहता है मुझे समय कुछ नहीं पता, मुझे तो केवल मैं केवल राम के अतिरिक्त तो और कुछ सोचता ही नहीं। ऐसी हनुमान सी लगन, सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहां थे कभी कोविद कहीं सके कहां थे। सारी उसकी महिमा गा रहे, कुबेर यम दिगपाल कवि कोविद नारद सारद ब्रह्मा मुनि सनकादि सहित अहित सारे सारे। ऐसी धारणा, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना। अब सुग्रीव जैसा डरपोक व्यक्ति और अपकारी व्यक्ति, राम ने मदद की और बाद में तो भूल गया राम को, ऐसे पर भी क्या किया। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। संसार की आत्माओं को राम से मिलाना और उन्हें राजपद के अधिकारी बनाना, ये हनुमान का कर्तव्य है। और वो हनुमान कौन है? हम। तो चाहे कितने भी सुग्रीव हो संसार में, राम से तो उन्हें मिलाना जरूर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का अपमान किया था या हमारा अपमान किया था, उसके पास हमने जाना ही बंद कर दिया, इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत अपमान अंदर धधक रहा है। परंतु राजपद कैसे देंगे उनको, राम से उनको कैसे मिलाएंगे? सुग्रीव की संसार में कमी नहीं है, राम ने उसकी मदद की, बाद में सुग्रीव तो भूल ही गया राम को। ऐसा अपकारी व्यक्तित्व, उस पर भी क्या की, उपकार किया। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय गए सब जग जाना। तुम्हारा मंत्र विभीषण ने भी माना। ऐसे भक्त आत्माएं भी संसार में उन विभीषण जैसे भक्तों को बाप से मिलाना। कितने भक्तों को मिलाया, बाबा कहते मंदिरों में जाओ, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, जहां जहां भक्त है, शिव के भक्त, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, देवताओं के भक्त है, जा जाकर उनको संदेश दो और राम से मिलाओ। जब तक संसार की सभी आत्माओं को संदेश ना दे दे, चैन से हम नहीं बैठ सकते। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु को खा लिया सूर्य को, क्या समझकर, ले लियो ताही मधुर फल जानू, मधुर फल समझकर ही खा लिया। बाबा कहते हैं तुम चिड़िया हो, क्या करती हो, सागर को हप कर देती हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलदी लांज गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य किस बात का नहीं है, इतना असंभव कार्य कर दिया। छोटे बच्चों की किताब है एलिस इन वंडरलैंड, उसमें एक प्रसंग है जिसमें एलिस के पिता कहते हैं कि मैं हर सुबह नाश्ता करने से पहले 6 ऐसे असंभव चीजों के बारे में सोचता हूं कि जो आज तक मैंने की नहीं और जो असंभव है और जो आज मुझे करनी है। 6 इम्पॉसिबल थिंग्स। हमने अपने पुरुषार्थ में ऐसी नवीनता लानी है कि आज सारे दिन भर 3 कहो, 4 कहो, 5 कहो या 6 असंभव बातें करनी है जो आज तक की ही नहीं, जैसे कि मुरली का चिंतन, मुरली का अध्ययन, जैसे कि ज्ञान की चर्चा। कोई भी 6 असंभव बातें जो हमारे जीवन में मेरे लिए असंभव सी है, लंबे समय तक अशरीरीपन का अनुभव, आज कम से कम 25 लोगों को आत्मा देखेंगे। ये अभ्यास। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार जिसे असंभव समझता है, तुम्हारे लिए क्या है? वो संभव है, सुगम है, सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है और तुम्हारी अपनी भी शक्ति है। मास्टर सर्वशक्तिवान तुम भी हो और सर्वशक्तिवान भी साथ है। डबल पावर, डबल इंजन। राम दुलारे हो तुम रखवारे हो। तना आज्ञा बिनु पैसारे। बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई राम के द्वार तक नहीं आ सकता। तुम राम के इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम कौन हो? राम के इस यज्ञ के रक्षक, रखवारे हो। सब सुख ले हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार कहता है कि तुम हमारे रक्षक हो, इसके लिए हम भयभीत नहीं हो सकते। हम निडर है, अभय है। हम तो अभय का वरदान देने वाले हैं कि हमारे अंदर ही डर, भय, फोबिया, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी तो नहीं, मेरा क्या होगा? तुम कौन हो? रक्षक हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज संभारो आप है, तीनों लोक हाकते कापे। ये वाक्य शायद वहां का है जब हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गया है, बैठे हैं सागर तट पर। वो जामवंत उसे याद दिलाता है, तुम कौन हो हनुमान? तुम्हें पता नहीं, तुमने भानु को खा लिया था, सूर्य को निगलने वाले तुम हो। इतनी शक्ति तुम में है। आपन तेज संभारो आपे, इतने तेजस्वी हो कि तुम खुद ही अपना तेज संभाल सकते हो। तीनों लोक हाकते कापे, तीनों ही लोक थरथर कांपता है, इतने पावरफुल तुम हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे माया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। डबल लॉक लगा के रखा है, दो दो डबल लॉक। महावीर जब नाम सुनावे, और तुम्हारा नाम से संसार की आत्माएं ऐसी अवस्था हो जाती है उनकी, तो तुम्हारे पास तो भूत पिशाच कुछ भी नहीं आ सकता है, कोई विकार नहीं आ सकता। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तुम्हारा नाम का गुणगान करते ही संसार के आत्माओं के पास भूत पिशाच, कोई पीड़ा, कोई रोग नहीं आ सकता। उसके लिए हमें खुद सभी रोगों से, सभी विकारों से मुक्त होना होगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। खुद संकट मुक्त हो गए हैं, विघ्न मुक्त, निर्विघ्न। मन क्रम वचन जपत निर, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम राजा नहीं है, तपस्वी वो बनाने वाला है। वास्तव में हमको वो तपस्वी बनाने वाला, ऐसा वो राम है। और जिसके काज हम कर रहे हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, होई सोई अमित जीवन फल पावे। मनोइंचित फल देने वाले तुम साक्षात्कार मूर्त हो। चारों युग परताप तुम्हारा। हमारा परताप कहां पर है? चार युग या पांचों युग? पांचों युग है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, इतने तुम प्रसिद्ध हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सबकी रखवाली करने वाले, विकारों का आक्रमण है संसार पर, जो महान आत्माएं हैं, साधु संत हैं, उनकी भी रक्षा तुम करते हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां तुम्हारे पास है, नव निधिया है, ज्ञान, गुण, शक्ति, पवित्रता, खुशी, दुआएं, संतुष्टता, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, समय, संकल्प, नव निधिया। राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन अर्थात, कई लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं, कोई कहता है भक्ति, कोई कहता है प्रेम। तो राम का प्रेम जिसके पास है, सदा रहो रघुपति के दासा। ये शब्द यहां से हटा दो, दास नहीं, यहां तो बच्चे हैं। तो अपने इस स्वरूप में स्थित होना, थोड़ी सी बातें रह गई है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद में 5 मिनट। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां राम जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरही, हनुमत से ही सब सुख करही। और किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक हनुमान तुम्हारी ही पूजा कर दो तो क्या हो जाएगा, सारे सुख मिल जाएंगे। क्या इतनी पावर हमने अपने में भरी है कि कोई भक्त हमारी केवल आराधना करे तो उसको सारे सुख मिल जाए, संकट कटे मिटे सब पीरा। क्या हमने अपने जीवन के सारे संकट मिटा दिए हैं? जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई अर्थात जिसकी इंद्रिया उसके वश में है, गो अर्थात इंद्रिया, इंद्रियों का जो मालिक है, ऐसे पुरुषार्थी आत्मा है, ऐसे प्रकृति जीत आत्मा है, ऐसे अधिकारी हकदार राम की आज्ञाकारी आत्मा है। कृपा करो गुरुदेव की नाई, हम उनके लिए हम ही गुरु है। एक गुरुदेव की मानिंद कृपा करो, जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। बंधनों से आत्माएं छूट जाएगी अगर इसका पाठ करेगा। किसका? हमारा। चालीसा किसका है? हमारा। तो सत्य बार, सत्य का अर्थ विद्वान लगाते 108 बार। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, गौरीसा अर्थात शिव, गौरी का साथी, वो साखी बन जाएगा, शिव का साथी बन जाएगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास को रहने दो चेरा, वो कहता है मैं तो भक्त हूं, मैं तो सेवक हूं, कीजे नाथ हृदय महा डेरा, मेरे हृदय में आकर निवास करो। कितनी अच्छी बात है, भगवान से कहता है, यह भगवान समझकर कह रहा है हनुमान को कि तुम मेरे हृदय में आकर निवास करो। मम हृदय कंज निवास करी कामादि कल धल भंजनम, मेरे हृदय में आ जाओ, यहां तुम निवास करो तो काम क्रोध सब कुछ भस्म हो जाएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति मूर्त मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। शुरुआत का हमने छोड़ दिया था, शुरुआत तो कहां से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। मुकुर, मुकुर अर्थात मिरर, मन रूपी दर्पण जो सुधर जाए यदि तेरे चरणों की रज मिल जाए तो। बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारु, चार फल, चार प्राप्तियां जो आज बाबा ने बताई। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। तो हम संसार की आत्माओं के कलेश विकार दूर करने वाले हैं, पांच कलेश बताते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच और छह विकार बताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, पांच विकार और छह क्लेश, ऐसे 11 चीजें। हनुमान को रुद्र अवतार कहा है 11वां, तो ये 11 चीजें मिटाने वाला। तो हम सभी कौन हुए आज, हनुमान, और माताएं बहनें शिव शक्तियां। जब भी भक्ति की कोई बात सुनो तो उसको किससे जोड़ना है, ज्ञान से। और यदि हनुमान के मंदिर से गुजर रहे हो, हनुमान चालीसा चालू हो, तो राजीव भाई क्या समझना, किसका चालीसा चालू है, मेरा ही चालीसा चालू है, रुक जाना क्या कह रहे हैं भक्त। ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया दोनों को समान बनाने वाले, ऐसे दिव्य नेत्र द्वारा सदैव आत्मिक स्वरूप को देखने वाले, जहां देखो वहां आत्मा ही दिखे, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।